पेश है 34वां सर्ग। पुलिस स्टेशन के दफ्तर में इस समय एक बड़ी मेज के सामने चार आदमी बैठे हुए थे। एक दरोगा था, गोरे से शौकीन, जिनकी बड़ी बड़ी आंखों में कोमलता की झलक थी। उनकी बगल में नायब दरोगा था। यह सिख थे, बहुत हंसमुख, सजीवता के पुतले, गेहुआ रंग, सुडौल सुगठित शरीर। सिर पर केस था, हाथों में कड़े, पर सिगार से परहेज न करते थे। मेज की दूसरी तरफ इंस्पेक्टर और डिप्टी सुपरिंटेंडेंट बैठे हुए थे। इंस्पेक्टर अधेड़ सांवला लंबा आदमी था, कौड़ी की सी आँखें, फूले हुए गाल और ठिगना कद। डिप्टी सुपरिंटेंडेंट लंबा छरहरा जवान था, बहुत ही विचारशील और अल्पभाषी। इसकी लंबी नाक और ऊंचा मस्तक उसकी कुशलता के साक्षी थे। डिप्टी ने सिगार का एक कस लेकर कहा, बाहरी गवाहों से काम नहीं चलने सकेगा, इनमें से किसी को अप्रूवर बनाना होगा और कोई अल्टरनेटिव नहीं है। इंस्पेक्टर ने दरोगा की ओर देखकर कहा, हम लोगों ने कोई बात उठा तो नहीं रखी। हलफ सा कहता हूँ, सभी तरह के लालच देकर हार गए। सबों ने ऐसी गुट कर रखी है कि कोई टूटता ही नहीं। हमने बाहर के गवाहों को भी आजमाया, पर सब कानों पर हाथ रखते हैं। डिप्टी, उस मारवाड़ी को फिर आजमाना होगा, उसके बाप को बुलाकर खूब धमकाइए, शायद इसका कुछ दबाव पड़े। इंस्पेक्टर, हलफ से कहता हूँ, आज सुबह से हम लोग यही कर रहे हैं। बेचारा बाप लड़के के पैरों पर गिरा, पर लड़का किसी तरह राजी नहीं होता। कुछ देर तक चारों आदमी विचारों में मग्न बैठे थे। अंत में डिप्टी ने निराशा के भाव से कहा, मुकदमा नहीं चलने सकता, मुफ्त का बदनामी होगा। इंस्पेक्टर, एक हफ्ते की मोहलत और लीजिए, शायद कोई टूट जाए। यह निश्चय करके दोनों आदमी यहाँ से रवाना हुए। छोटे दरोगा ने भी उनके साथ ही चले गए। दरोगा जी ने हुक्का मंगवाया कि सहसा एक मुसलमान सिपाही ने आकर कहा, दरोगा जी लाइए कुछ इनाम दिलवाइए, एक मुलजिम को सुबह पर गिरफ्तार किया है, इलाहाबाद का रहने वाला है, नाम है रमानाथ। पहले नाम और सकुनत दोनों गलत बतलाई थी। देवीदीन खटिक जो नुक्कड़ पर रहता नहीं है, उसी के घर ठहरा हुआ है, जरा डांट बताइए तो सब उगल देगा। दरोगा, देवीदीन वही है ना जिसके दोनों लड़के? सिपाही, जी हाँ वही है। इतने ब्रह्मानाथ भी दरोगा के सामने हाजिर किया गया। दरोगा ने उसे सिर से पांव तक देखा, मानो मन में उसका हुलिया मिला रहे हों। तब कठोर दृष्टि से देखकर बोले, अच्छा ये इलाहाबाद का रमानाथ है, खूब मिले भाई, 6 महीने से परेशान कर रहे हो, कैसा साफ हुलिया है कि अंधा भी पहचान ले, यहाँ कब से आए हो? कांस्टेबल ने रमा को परामर्श दिया, सब हाल सच सच कह दो तो तुम्हारे साथ कोई सख्ती न की जाएगी। रमा ने प्रसन्नचित बनने की चेष्टा करके कहा, अब तुम आपके हाथ में हूँ, रियायत कीजिए या सख्ती कीजिए। इलाहाबाद की म्यूनिसपल्टी में नौकर था, हिमाकत कहिए या बदनसीबी, चुंगी के 400 रुपये मुझसे खर्च हो गए, मैं वक्त पर रुपए जमा न कर सका, शर्म के मारे घर के आदमियों से कुछ न कहा, नहीं तो इतने रुपए का इंतजाम हो जाना कोई मुश्किल न था। जब कुछ बस न चला तो वहाँ से भाग कर यहाँ चला आया, इसमें एक हरफ भी गलत नहीं है। दारोगा ने गंभीर भाव से कहा, मामला कुछ संगीन है, क्या कुछ शराब का चस्का पड़ गया था? मुझसे कसम ले लीजिए जो कभी शराब मुंह से लगाई हो। कांस्टेबल ने विनोद करके कहा, मोहब्बत के बाजार में लुट गए होंगे हुजूर। रमा ने मुस्कुरा कर कहा, मुझसे तो फाके मस्तों का वहाँ वहाँ गुजर। दरोगा, तो क्या जुआ खेल डाला या बीवी के लिए जेवर बना डाले? रमा झेप कर रह गया, अपराधी मुस्कुराहट उसके मुख पर रो पड़ी। दरोगा, अच्छी बात है, तुम्हें यहाँ खासे मोटे जेवर मिल जाएंगे। एकाएक बूढ़ा देवीदीन आकर खड़ा हो गया। दरोगा ने कठोर स्वर में कहा, क्या काम है यहाँ? देवीदीन हुजूर को सलाम करने चला गया, इन बेचारे पर दया की नज़र रहे हुजूर, बेचारे बड़े सीधे आदमी हैं। दरोगा, बच्चा सरकारी मुलजिम को घर में छिपाते हो, उस पर सिफारिश करने आए हो? देवीदीन, मैं क्या सिफारिश करूँगा हुजूर, दो कौड़ी का आदमी। दरोगा, जानता है, इन पर वारंट है, सरकारी रुपये गबन कर गए हैं। देवीदीन, हुजूर भूल चूक आदमी से ही तो होती है, जवानी की उम्र ही है, खर्च हो गए होंगे। यह कहते हुए देवीदीन ने 5 गिन्नियाँ कमरे से निकालकर मेज पर रख दी। दरोगा ने तड़प कर कहा, यह क्या है? देवीदीन, कुछ नहीं है हुजूर, हुजूर को पान खाने को। दरोगा, रिश्वत देना चाहता है, क्यों कहो तो बचा इसी इल्जाम में भेज दूँ। देवीदीन, भेज दीजिए सरकार, घर वाली लकड़ी कफन की फिक्र से छूट जाएगी, वहीं बैठा आपको दुआ दूंगा। दरोगा, अब इन्हें छुड़ाना है तो 50 गिन्नियाँ लाकर सामने रखो, जानते हो इनकी गिरफ्तारी पर 500 रुपये का इनाम है। देवीदीन, आप लोगों के लिए इतना इनाम क्या है, यह गरीब परदेसी आदमी है, जब तक जिएंगे आपको याद करेंगे। दरोगा, बक बक मत कर, यहाँ धर्म कमाने नहीं आया हूँ। देवीदीन, बहुत तंग हूँ हुजूर, दुकानदारी तो नाम की है। कांस्टेबल, बुढ़िया से मांग जाके। देवीदीन, कमाने वाला तो मैं ही हूँ भैया, लड़कों का हाल जानते ही हो, तन पेट काट काट कर कुछ रुपए जमा कर रखे थे, सो भी सातों धाम किए चला आता हूँ, बहुत तंग हो गया हूँ। दरोगा, तो अपनी गिन्नियाँ उठा ले, इसे बाहर निकाल दो जी। देवीदीन, आपका हुक्म है तो लीजिए, जाता हूँ, धक्के क्यों दिलवाइएगा। दरोगा कांस्टेबल से, इन्हें हिरासत में रखो, मुंशी से कहो इनका बयान लिख ले। देवीदीन के ओठ आवेश से कांप रहे थे, उसके चेहरे पर इतनी व्यग्रता रमा ने कभी नहीं देखी थी, जैसे कोई चिड़िया अपने घोंसले में कौवे को घुसते देखकर विह्वल हो गई हो। वह एक मिनट तक थाने के द्वार पर खड़ा रहा, फिर पीछे फिरा और एक सिपाही से कुछ कहा, तब लपका हुआ सड़क तक चला गया, मगर एक ही पल में फिर लौटा और दरोगा से बोला, हुजूर 2 घंटे की मोहलत न दीजिएगा। रमा भी वहीं खड़ा था, उसकी यह ममता देख कर रो पड़ा, बोला, दादा अब तुम हैरान न हो, मेरे भाग्य में जो कुछ लिखा है वह होने दो, मेरे पिता भी यहाँ होते तो इससे ज्यादा और क्या करते, मैं मरते दम तक तुम्हारा उपकार। देवीदीन ने आंखें पोंछते हुए कहा, कैसी बातें करते हो भैया, जब रुपयों पर आई तो देवीदीन पीछे हटने वाला आदमी नहीं है, इतने रुपए तो एक एक दिन जुए में हार जीत गया हूँ, अभी घर बेच दूँ तो 10,000 की मालियत है, क्या सिर पर लाद कर ले जाऊँगा। दरोगा जी, अभी भैया को हिरासत में न भेजो, मैं रुपए की फिक्र करके थोड़ी ही देर में आता हूँ। देवीदीन चला गया तो दरोगा जी ने सहृदयता से भरे हुए स्वर में कहा, है तो खुर्राट मगर बड़ा नेक, तुमने इसे कौन सी बूटी सुंघा दी। रमा ने कहा, गरीबों पर सभी को रहम आता है। दरोगा ने मुस्कुराकर कहा, पुलिस को छोड़कर इतना और कहिए, मुझे तो यकीन नहीं कि 50 गिन्नियाँ लावे। रमानाथ, अगर लाए भी तो उसे इतना बड़ा तावान नहीं दिलाना चाहता, आप मुझे शौक से हिरासत में ले लें। दरोगा, मुझे 500 के बदले 650 मिल रहे हैं, क्यों छोड़ूं, तुम्हारी गिरफ्तारी का इनाम मेरे किसी दूसरे भाई को मिल जाए तो क्या बुराई है। रमानाथ, जब मुझे चक्की पीसनी है तो जितनी जल्द पीस लूँ उतना ही अच्छा, मैंने समझा था मैं पुलिस की नज़रों से बचकर रह सकता हूँ, अब मालूम हुआ कि यह बेकली और आठों पहर पकड़ लिए जाने का खौफ जेल से कम जानलेवा नहीं। दरोगा जी को एकाएक जैसे कोई भूली हुई बात याद आ गई, मेज के दराज से एक मिसल निकाली, उसके पन्ने इधर उधर पलटे, तब नम्रता से बोले, अगर मैं कोई ऐसी तरकीब बतलाऊं कि देवीदीन के रुपए भी बच जाएं और तुम्हारे ऊपर भी हर्फ न आए तो कैसा। रमा ने अविश्वास के भाव से कहा, ऐसी कोई तरकीब है मुझे तो आशा नहीं। दरोगा, अजी साईं के 100 खेल हैं, इसका इंतजाम मैं कर सकता हूँ, आपको महज एक मुकदमे में शहादत देनी पड़ेगी। रमानाथ, झूठी शहादत होगी। दरोगा, नहीं बिल्कुल सच्ची, बस समझ लो कि आदमी बन जाओगे, म्यूनिसपैलिटी के पंजे से तो छूट ही जाओगे, शायद सरकार परवरिश भी करे, यूँ अगर चालान हो गया तो 5 साल से कम की सजा न होगी, मान लो इस वक्त देवी तुम्हें बचा भी ले तो बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी, जिंदगी खराब हो जाएगी, तुम अपना नफा नुकसान खुद समझ लो, मैं जबरदस्ती नहीं करता। दरोगा जी ने डकैती का वृतांत कह सुनाया। रमा ऐसे कई मुकदमे समाचार पत्रों में पढ़ चुका था, संशय के भाव से बोला, तो मुझे मुखबिर बनना पड़ेगा और यह कहना पड़ेगा कि मैं भी इन डकैतियों में शरीक था, यह तो झूठी शहादत हुई। दरोगा, मामला बिल्कुल सच्चा है, आप बेगुनाहों को न फंसाएंगे, वही लोग जेल जाएंगे जिन्हें जाना चाहिए, फिर झूठ कहाँ रहा, डाकुओं के डर से यहाँ के लोग शहादत होने पर राजी नहीं होते, बस और कोई बात नहीं, यह मैं मानता हूँ कि आपको कुछ झूठ बोलना पड़ेगा, लेकिन आपकी ज़िंदगी बनी जा रही है, इसके लिहाज से तो इतना झूठ कोई चीज़ नहीं, खूब सोच लीजिए, शाम तक जवाब दीजिएगा। रमा के मन में बात बैठ गई, अगर एक बार झूठ बोलकर वो अपने पिछले कर्मों का प्रायश्चित कर सके और भविष्य भी सुधार ले तो पूछना ही क्या, जेल से तो बच जाएगा, इसमें बहुत आगा पीछा की जरूरत ही न थी। हाँ, इसका निश्चय हो जाना चाहिए कि उस पर फिर म्यूनिसपैलिटी अभियोग न चलाएगी और उसे कोई अच्छी जगह मिल जाएगी, वह जानता था पुलिस को गरज है और वह मेरी कोई वाजिब शर्त अस्वीकार न करेगी। इस तरह बोला, मानो उसकी आत्मा धर्म और अधर्म के संकट में पड़ी हुई है, मुझे यही डर है कि कहीं मेरी गवाह से बेगुनाह लोग न फंस जाएं। दरोगा, इसका मैं आपको इत्मीनान दिलाता हूँ। रमानाथ, लेकिन कल को म्यूनिसपैलिटी मेरी गर्दन नापे तो मैं किसे पुकारूंगा। दरोगा, मजाल है म्यूनिसपैलिटी चूँ कर सके, फौजदारी के मुकदमे मुद्दई तो सरकार ही होगी, जब सरकार आपको मुआफ़ कर देगी तो मुकदमा कैसे चलाएगी, आपको तहरीरी मुआफ़ीनामा दे दिया जाएगा साहब। रमानाथ, और नौकरी। दरोगा, वह सरकार आप इंतजाम करेगी, ऐसी आदमियों को सरकार खुद अपना दोस्त बनाए रखना चाहती है, अगर आपकी शहादत बढ़िया हुई और उस फरीक की जिरहों के जाल से आप निकल गए तो फिर आप पारस हो जाएंगे। दारोगा जी ने उसी वक्त मोटर मंगवाई और रमा को साथ लेकर डिप्टी साहब से मिलने चल दिए, इतनी बड़ी कारगुजारी दिखाने में विलंब क्यों करते। डिप्टी से एकांत में खूब जीत उड़ाई, इस आदमी का यूँ पता लगाया, उसकी सूरत देखते ही भांप गया कि मफरूर है, बस गिरफ्तार ही तो कर लिया। बात सोलहों आने सच निकली, निगाहें कहीं चूक सकती है, हुजूर मुजरिम की आंखें पहचानता हूँ, इलाहाबाद की म्यूनसिपल्टी के रुपए गबन करके भागा है, इस मामले में शहादत देने को तैयार है, आदमी पढ़ा लिखा, सूरत का शरीफ और जहीन है। डिप्टी ने संदिग्ध भाव से कहा, हाँ आदमी तो होशियार मालूम होता है, मगर मुआफ़ीनामा लिए बगैर इसे हमारा एतबार न होगा, कहीं इसे यह सुबह हुआ कि हम लोग इसके साथ कोई चाल चल रहे हैं तो साफ निकल जाएगा। डिप्टी, यह तो होगा ही, गवर्नमेंट से इसके बारे में बातचीत करना होगा, आप टेलीफोन मिलाकर इलाहाबाद पुलिस से पूछिए कि इस आदमी पर कैसा मुकदमा है, यह सब तो गवर्नमेंट को बताना होगा। दारोगा जी ने टेलीफोन डायरेक्टरी देखी, नंबर मिलाया और बातचीत शुरू की। डिप्टी, क्या बोला? दारोगा, कहता है यहाँ इस नाम के किसी आदमी पर मुकदमा नहीं है। डिप्टी, यह कैसा है भाई, कुछ समझ में नहीं आता, इसने नाम तो नहीं बदल दिया? दारोगा कहता है म्यूनसिपल्टी में किसी ने रुपए गबन नहीं किए, कोई मामला नहीं है। डिप्टी, ये तो बड़ा ताजुब का बात है, आदमी बोलता है हम रुपया लेकर भागा, म्यूनसिपल्टी बोलता है कोई रुपया गबन नहीं किया, यह आदमी पागल तो नहीं है? दारोगा, मेरी समझ में कोई बात नहीं आती, अगर कह दें कि तुम्हारे ऊपर कोई इल्ज़ाम नहीं तो फिर उसकी गर्द भी न मिलेगी। अच्छा, म्यूनसिपल्टी के दफ्तर से पूछिए। दारोगा ने फिर नंबर मिलाया, सवाल जवाब होने लगे। दारोगा, आपके यहाँ रमानाथ कोई क्लर्क था? जवाब, जी हाँ था। दारोगा, वह कुछ रुपए गबन करके भागा है? जवाब, नहीं, वह घर से भागा है पर गबन नहीं किया। क्या वह आपके यहाँ है? दारोगा, जी हैं, हमने उसे गिरफ्तार किया है, वह खुद कहता है कि मैंने रुपए गबन किए, बात क्या है? जवाब, पुलिस तो लाल भुझक्कड़ है, जरा दिमाग लड़ाइए। दारोगा, यहाँ तो अक्ल काम नहीं करती। जवाब, यहीं क्या, कहीं भी नहीं करती, सुनिए, रमानाथ ने मिजान लगाने में गलती की, डर कर भागा, बाद को मालूम हुआ कि तहबील में कोई कमी न थी, आई समझ में बात? डिप्टी, अब क्या करने होगा खां साहब, चिड़िया हाथ से निकल गया। दारोगा, निकल कैसे जाएगी हुजूर, रमानाथ से यह बातें कही ही क्यों जाए, बस उसे किसी ऐसे आदमी से मिलने दिया जाए तो बाहर की खबरें पहुंचा सके, घर वालों को उसका पता अब लग जाएगा ही, कोई ना कोई जरूर उसकी तलाशी में आवेगा, किसी को ना आने दें, तहरीर में कोई बात न लाई जाए, जवानी इत्मीनान दिला दिया जाए, कह दिया जाए कमिश्नर साहब को मुआफ़ीनामे के लिए रिपोर्ट की गई है, इंस्पेक्टर साहब से भी राय ले ली जाए। इधर तो यह लोग सुपरिंटेंडेंट से परामर्श कर रहे थे, उधर एक घंटे में देवीदीन लौटकर थाने आया तो कांस्टेबल ने कहा, दारोगा जी के तो साहब के पास गए हैं। देवीदीन ने घबरा कर कहा, तो बाबूजी को हिरासत में डाल दिया? कांस्टेबल, नहीं, उन्हें भी साथ ले गए। देवीदीन ने सर पीट कर कहा, पुलिस वालों की बात का कोई भरोसा नहीं, कह गया कि एक घंटे में रुपए लेकर आता हूँ, मगर इतना भी सब्र न हुआ, सरकार से 500 तो मिलेंगे, मैं 600 देने को तैयार हूँ, हाँ सरकार में कारगुजारी हो जाएगी और क्या, वहीं से उन्हें प्रयागराज भेज देंगे, मुझसे भेंट भी न होगी, बुढ़िया रो रो कर मर जाएगी। यह कहता हुआ देवीदीन वहीं जमीन पर बैठ गया। कांस्टेबल ने पूछा, तो यहाँ कब तक बैठे रहोगे? देवीदीन ने मानो कोड़े की काट से आहत होकर बोला, अब तो दारोगा जी से दो दो बातें करके ही जाऊँगा, चाहे जेहल ही जाना पड़े, पर फटकारूंगा जरूर, बुरी तरह फटकारूंगा, आखिर उनके भी तो बाल बच्चे होंगे, क्या भगवान को जरा भी नहीं डरते? तुमने बाबूजी को जाती बार देखा था, बहुत रंजीदा थे। कांस्टेबल, रंजीदा तो नहीं थे, खासी तरह हंस रहे थे। दोनों जने मोटर बैठ कर गए हैं। देवीदीन ने अविश्वास के भाव से कहा, हंस क्या रहे होंगे बेचारे, मुंह से चाहे हंस लें, दिला तो रात रोता ही होगा, दिल तो रोता ही होगा। देवीदीन को यहाँ बैठे एक घंटे भी न हुआ था कि सहसा जग्गो आ खड़ी हुई, देवीदीन को द्वार बैठे देख कर बोली, तुम यहाँ क्या करने लगे, भैया कहाँ हैं? देवीदीन ने मर्माहत होकर बोला कहा, भैया को ले गए सुपरिंटेंडेंट के पास, न जाने भेंट होती है कि ऊपर ही ऊपर प्रयागराज भेज दिए जाते हैं। जग्गो, दारोगा जी भी बड़े वह हैं, कहाँ तो कहा था इतना लेंगे, कहाँ लेकर चल दिए। देवीदीन, इसलिए तो बैठा हूँ कि आवे तो दो दो बातें कर लूँ। जग्गो, हाँ फटकारना जरूर, जो अपनी बात का नहीं वो अपने बाप का क्या होगा, मैं तो खरी कहूँगी, मेरा क्या कर लेंगे। देवीदीन, दुकान पर कौन है? जग्गो, बंद कर आई हूँ, अभी बेचारे ने कुछ खाया भी नहीं, सवेरे से वैसे ही हैं, चूल्हे में जाए बतमाशा, उसी के टिकट लेने तो जाते थे, न घर से निकलते तो काहे को यह बला सिर पड़ती। देवीदीन, जो इधर ही से पराग भेज दिया हो। जग्गो, तो चिट्ठी तो आवेगी ही, चल कर वहीं देख आवेंगे। देवीदीन आंखों में आंसू भरकर, सजा हो जाएगी। जग्गो, रुपए जमा कर देंगे तब काहे को होगी, सरकार अपने रुपए ही तो लेगी। देवीदीन, नहीं पगली, ऐसा नहीं होता, चोर माल लौटा दे तो वह छोड़ थोड़े ही दिया जाएगा। जग्गो ने परिस्थिति की कठोरता अनुभव करके कहा, दारोगा जी वह अभी बात भी पूरी न कर करने पाई थी कि दरोगा जी की मोटर सामने आ पहुंची। इंस्पेक्टर साहब भी थे। रमा इन दोनों को देखते ही मोटर से उतरकर आया और प्रसन्न मुख से बोला, तुम यहाँ देर से बैठे हो क्या दादा, आओ कमरे में चलो। अम्मा तुम कब आई, दरोगा जी ने विनोद करके कहा। कहो चौधरी, लाए रुपए। देवी दीन, जब कह गया कि मैं थोड़ी देर में आता हूँ तो आपको मेरी राह देख लेनी चाहिए थी। चलिए अपने रुपए लीजिए, दरोगा खोद कर निकाले होंगे। देवी दीन, आपके अकबाल से 1500 भी ऊपर ही निकल सकते हैं, जमीन खोदने की जरूरत नहीं पड़ी। चलो भैया, बुढ़िया कब से खड़ी है, मैं रुपए चुका कर आता हूँ। यह तो इंस्पेक्टर साहब थे न, पहले इसी थाने में थे। दारोगा, तो भाई अपने रुपए ले जाकर उसी हांडी में रख दो। अफसरों की सलाह हुई कि इन्हें छोड़ना न चाहिए, मेरे पास बस की बात नहीं है। इंस्पेक्टर साहब तो पहले ही दफ्तर में चले गए थे। ये तीनों आदमी बातें करते उसके बगल वाले कमरे में गए। देवी दीन ने दारोगा की बात सुनी तो उसकी भौहें तिरछी हो गई। बोला, दरोगा जी, मर्दों की एक बात होती है, मैं तो यही जानता हूँ। मैं रुपए आपके हुक्म से लाया हूँ, आपको अपना कॉल पूरा करना पड़ेगा। कह के मुकर जाना नीचों का काम है। इतने कठोर शब्द सुनकर दरोगा जी को भन्ना जाना चाहिए था, पर उन्होंने जरा भी बुरा नहीं माना। हंसते हुए बोले, भाई अब चाहे नीच कहो चाहे दगाबाज कहो, पर हम इन्हें छोड़ नहीं सकते। ऐसे शिकार रोज नहीं मिलते, कॉल के पीछे अपनी तरक्की नहीं छोड़ सकता। दारोगा के हंसने पर देवी दीन और भी तेज हुआ। तो आपने कहा किस मुंह से था? दारोगा, कहा तो इसी मुंह से था, लेकिन मुंह हमेशा एक साथ तो नहीं रहता। इसी मुंह से जिसे गाली देता हूँ उसकी इसी मुंह से तारीफ भी करता हूँ। देवी दीन तिनक कर यह मूछे मुड़वा डालिए। दारोगा, मुझे बड़ी खुशी से मंजूर है, नीयत तो मेरी पहले ही थी, पर शर्म के मारे न मुड़वाता था, अब तुमने दिल मजबूत कर दिया। देवी दीन, हंसिए मत दारोगा जी, आप हंसते हैं और मेरा खून जला जाता है। मुझे चाहे जेहल ही क्यों ना हो जाए, लेकिन मैं कप्तान साहब से जरूर कह दूंगा। हूँ तो टके का आदमी, पर आपके अकबाल से बड़े अफसरों तक पहुँचे। दारोगा, अरे यार, तो क्या सचमुच कप्तान साहब से मेरी शिकायत कर दोगे? देवी दीन ने समझा कि धमकी कारगर हुई, अकड़ कर बोला, आप जब किसी की नहीं सुनते, बात कहकर मुकर जाते हैं तो दूसरे भी अपनी सी करेंगे ही। मैम साहब तो रोज ही दुकान पर आती हैं। दारोगा, कौन? देवी, अगर तुमने साहब या मैम साहब से मेरी कुछ शिकायत की तो कसम खाकर कहता हूँ घर खुदवा कर फेंक दूंगा। देवी दीन, जिस दिन मेरा घर खुदेगा उस दिन यह पगड़ी और चपरास भी न रहेगी हुजूर। दारोगा, अच्छा तो मारो हाथ पर हाथ, हमारी तुम्हारी दो दो चोटें हो जाए, यही सही। देवी दीन, पछताओगे सरकार, कह देता हूँ पछताओगे। रमा अब जब्त न कर सका। अब तक वह देवी दीन के बिगड़ने का तमाशा देखने के लिए भीगी बिल्ली बना खड़ा था। कह कहा मारकर बोला, दादा, दारोगा जी तुम्हें चिल्ला रहे हैं, हम लोगों में ऐसी सलाह हो गई है कि मैं बिना कुछ लिए दिए ही छूट जाऊंगा, ऊपर से नौकरी भी मिल जाएगी। साहब ने पक्का वादा किया है, मुझे अब यहीं रहना होगा। देवी दीन ने रास्ता भटके हुए आदमी की भांति कहा, कैसी बात है भैया, क्या कहते हो, क्या पुलिस वालों के चकमे में आ गए? इसमें कोई न कोई चाल जरूर छिपी होगी। रमा ने इत्मीनान के साथ कहा, और कोई बात नहीं, एक मुकदमे में शहादत देनी पड़ेगी। देवी दीन ने संशय से सिर हिलाकर कहा, झूठा मुकदमा होगा। रमानाथ, नहीं दादा, बिल्कुल सच्चा मामला है, मैंने पहले ही पूछ लिया है। देवी दीन की शंका न शांत हुई, बोला, मैं इस बारे में और कुछ नहीं कह सकता भैया, जरा सोच समझ कर काम करना। अगर मेरे रुपयों को डरते हो तो यही समझ लो कि देवी दीन ने अगर रुपयों की परवाह की होती तो आज लखपति होता। इन्हीं हाथों से 100 रुपए रोज कमाए और सब के सब उड़ा दिए, किस मुकदमे में शहादत देनी है कुछ मालूम हुआ? दारोगा जी ने रमा को जवाब देने का अवसर न देकर कहा, वही डकैतियों वाला मामला है जिसमें कई गरीब आदमियों की जान गई थी। इन डाकुओं ने सूबे भर में हंगामा मचा रखा था, उनके डर के मारे कोई आदमी गवाह देने पर राजी नहीं होता। देवी दीन ने उपेक्षा के भाव से कहा, अच्छा तो यह मुखबिर बन गए, यह बात है, इसमें तो जो पुलिस सिखाएगी वही तुम्हें करना पड़ेगा भैया। मैं छोटी समझ का आदमी हूँ, इन बातों का मरम क्या जानूं, पर मुझसे मुखबिर बनने को कहा जाता तो मैं न बनता, चाहे कोई लाख रुपए देता। बाहर के आदमी को क्या मालूम कौन अपराधी है कौन बेकसूर, दो चार अपराधियों के साथ दो चार बेकसूर भी जरूर ही होंगे। दारोगा, हरगिज नहीं, जितने आदमी पकड़े गए हैं सब पक्के डाकू हैं। देवी दीन, यह तो आप कहते हैं ना, हमें क्या मालूम। दारोगा, हम लोग बेगुनाहों को फंसाएंगे ही क्यों, यह तो सोचो। देवी दीन, यह सब भुगते बैठा हूँ दारोगा जी, इससे तो यही अच्छा है कि आप इनका चालान कर दें, साल दो साल का जेहल ही तो होगा। एक अधर्म के दंड से बचने के लिए बेगुनाहों का खून तो सिर पर न चढ़ेगा। रमा ने भीरुता से कहा, मैंने खूब सोच लिया है दादा, सब कागज देख लिए हैं, इसमें कोई बेगुनाह नहीं है। देवी दीन ने उदास होकर कहा, होगा भाई, जान भी तो प्यारी होती है। यह कहकर वह पीछे घूम पड़ा। अपने मनोभावों को स्पष्ट रूप से वह प्रकट न कर सकता था। एकाएक उसे एक बात याद आ गई, मुड़कर बोला, तुम्हें कुछ रुपए देता जाऊं। रमा ने खिसियाकर कहा, क्या जरूरत है दरोगा, आज से इन्हें यहीं रहना पड़ेगा। देवीदी ने कर्कश स्वर में कहा, हाँ हुजूर, इतना जानता हूँ। इनकी दावत होगी, बंगला रहने को मिलेगा, नौकर मिलेंगे, मोटर मिलेगी, यह सब जानता हूँ। कोई बाहर का आदमी इनसे मिलने न पावेगा, न यह अकेले कहीं आ जा सकेंगे, यह सब देख चुका हूँ। यह कहता हुआ देवीदी ने तेजी से कदम उठाता हुआ चल दिया, मानो वहाँ उसका दम घुट रहा हो। दारोगा ने उसे पुकारा, पर उसने फिर कर न देखा। उसके मुख पर पराभूत वेदना छाई हुई थी। जग्गू ने पूछा, भैया नहीं आ रहे हैं? देवीदी ने सड़क की ओर ताकते हुए कहा, भैया अब नहीं आवेंगे, जब अपने ही अपने न हुए तो बेगाने ही हैं। वह चला गया। बुढ़िया भी पीछे पीछे भुनभुनाती चली।